बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरुदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम अखबारात के जायज़े में खुश आमदीद। हसब मामूल नज़र डालेंगे ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों पर, मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तो आइए सबसे पहले नजर डालें ईरान से शाया होने वाले अखबार जम्हूरी इस्लामी की कुछ अहम सुर्खियों पर। कजाकिस्तान मुजाकरात पर ईरान और ग्रुप 5 जमा 1 का इजहार इत्मीनान। ईरान और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक नजर से एक दूसरे के साथ हैं, सदर ममलिकत। जंग इराक के 10 बरस बाद भी लोग मुझसे मुतनफिर हैं, टोनी ब्लेयर। रोजनामा जम्हूरी इस्लामी ने सुर्खी कायद इंकलाब से सदर पाकिस्तान की मुलाकात के ज़ैल में लिखा है। कायद इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा इमाम खामेनेई ने मुसलमानों में इख्तिलाफ और तफरका पैदा किए जाने को आलमी इस्तिकबार और सहूनियत का सोचा समझा मंसूबा करार दिया है। कायद इंकलाब इस्लामी ने पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे तेहरान के मौके पर अंजाम पाने वाली मुलाकात में इस्लामी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फरोग को मुसलमानों के मसाइल के हल का एक अहम सबब करार देते हुए फरमाया कि मुसलमानों के बहुत से मसाइल दुश्मनान इस्लाम के पैदा करदा हैं, जिनके हल में आलम इस्लाम की इस्तेदाद और सलाहियत और जुग्राफियाई पोजिशन मुअस्सर किरदार अदा कर सकती है। कायद इंकलाब इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी कत्लेआम वाकई अफसोसनाक है और हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाई के साथ इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि इस मुल्क में कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया जा सके। अखबार जम्हूरी इस्लामी ने ईरान के बारे में जॉन कैरी के लिए जरूरी मालूमात उनवान के तहत फाइनेंशियल टाइम्स का एक मजमून शाया किया है, जिसके अहम इक्तिबासात पेश खिदमत हैं।
अमरीकी वजीर खारजा के उनवान से अपने पहले गैर मुल्की दौरे में जॉन कैरी ने एक बार फिर जोर दिया है कि ईरान एटमी क्लब में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने और अमरीकी नायब सदर जो बाइडेन ने भी इस बात पर जोर देते हुए ईरान के साथ मुजाकरात पर आमदगी भी जाहिर की है। मुजाकरात की इन अमरीकी तजावीज पर ईरान के कायद इंकलाब इस्लामी का जवाब ये था कि मुजाकरात से मसाइल का हल नहीं होगा। ईरान ने एटमी मसले के आगाज में कई बार ये तजवीज़ दी थी कि अगर इसके एटमी हक को तस्लीम कर लिया जाए तो वो अफजूदगी का अमल तकरीबन 5% तक पहुँचा कर रोक देगा। उसके बाद तकरीबन 2-3 बरसों से ईरान ने तेहरान एटमी रिएक्टर के इंजन की फराहमी की सूरत में यूरेनियम की 20% अफजूदगी को रोकने की तजवीज़ दी है, लेकिन हर बार मगरिब ने इन तजावीज़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ईरान के कायद इंकलाब अमरीका से मुज़ाकरात से सिरे से मुखालिफ नहीं है, लेकिन वाशिंगटन को ईरान की आला क़यादत के तहफ़ुज़ात को समझना चाहिए। इस सिलसिले में दो अहम नुक़ात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता 2 अशरों में आलमी ताकतों और इलाकाई मुल्कों की तरफ से ईरान की अर्जी सलामियत के लिए खतरात पैदा किए गए, जिसकी एक मिसाल ईरान के खिलाफ इराक की 8 साल जंग है। यही वजह है कि ईरानी कौम धमकी व ज़बरदस्ती के सामने झुकती नहीं। दूसरी बात यह है कि बाराक ओबामा की हिकमत अमली भी अपने पेशरों की तरह ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की तरगीब ऐसे हालात में देना है कि जब इस्लामी जमहूरी ईरान के खिलाफ मुखासिमाना रवैया भी जारी हो, जिससे ईरानी हुकाम के दिल में इस ख्याल की तकवीत होती है कि अमरीका का असल इरादा इस्लामी हुकूमत का खात्मा है और इसके रवैये में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है। आखिर में ये कहना चाहिए कि अगर हुस्न नीयत और मुसावात के साथ और धमकी के माहौल से हटकर मुज़ाकरात हों तो यकीनन ईरान भी उसका खैर मकदम करेगा اوباما اور کیری کو مذاکرات کی تجویز سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا، انہیں دھمکی اور مخاصمانہ رویہ چھوڑنا ہوگا، ان سب کے بعد سفارتکاری اپنا اثر دکھائے گی۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم لوگ ہندوستان کی طرف جائیں گے اور وہاں پر وہاں سے نشریات آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں اطہر سعید، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی اطہر سعید،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر مالیات کے ذریعے پارلیمنٹ میں پیش کردہ معاشی سروے سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اسے سرخی دی ہے، شرح ترقی میں گراوٹ کا سلسلہ تقریباً ختم، 2013-14 کا اقتصادی جائزہ پارلیمنٹ میں پیش۔ وزیر مالیات پی چدمبرم نے کہا، ملک کی شرح نمو 6.1% سے 6.7% تک رہنے کا امکان، عام بجٹ آج۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمانی وفد کی لوک سبھا اسپیکر میرا کمار سے ملاقات، ہیلی کاپٹر سودے کی JPC جانچ پر حکومت تیار۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں خالد شیخ کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے بم دھماکے اور ہماری تفتیشی ایجنسیاں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کا دلسکھ نگر علاقہ تعلیمی، تفریحی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جہاں کمپیوٹر کوچنگ کے سینکڑوں ادارے ہیں، تھیٹر ہیں اور پھلوں اور اناج کا ہول سیل مارکیٹ ہے۔ اس علاقے میں سائیں بابا کا مشہور مندر ہے، جہاں ہر جمعرات کو حاضری دینے والوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ 21 فروری کو اس علاقے میں 5 منٹ کے اندر 2 دھماکے ہوئے، جن میں 17 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 5 مسلمان ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا پختہ سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے جس کی بنیاد پر ملزمین کی شناخت ہو سکے۔ پوچھ تاچھ کے لیے کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ تخریب کاروں اور ایجنسیوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اول ذکر موقع محل کے لحاظ سے اپنی سوچ اور طریقہ کار میں شاطرانہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اور تفتیشی ایجنسیوں سے کئی قدم آگے رہتے ہیں، جن کی کارکردگی مبہم اور ناکافی معلومات، نامکمل تفتیش اور غیر ضروری حراستوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ موجودہ ایجنسیوں کی غیر مؤثر کارکردگی کا بڑا سبب مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں کے درمیان رابطے اور تال میل کا فقدان، مسلمانوں کے تئیں جانبدارانہ رویہ اور سیاسی مداخلت ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ ہمارا سماج کی سرخیوں پر۔ کولکتہ کے سوری سین بازار میں بھیانک آتش زدگی، 19 ہلاک، 50 سے زائد زخمی۔ حیدرآباد دھماکوں کی رپورٹ وزارت داخلہ کے سپرد، تفتیش کاروں نے ابتدائی رپورٹ میں نئے دہشت گرد گروپ کی جانب اشارہ دیا، بنیادی مسائل میں ہندو پاک برابر، حسین حقانی۔ ناظرین، روزنامہ ہمارا سماج نے اپنے ادارے میں پارلیمنٹ میں صدائے احتجاج کے عنوان سے لکھا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک مسلمان اپنے ہی ملک میں مختلف مسائل سے دوچار رہے ہیں، اور ملک کے فرقہ پرستوں اور حکومت کی خاموشی نیز اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو خاموشی سے برداشت کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ مسلمانوں پر ملک میں پھیلی ہوئی فرقہ پرستوں کی جماعتوں اور ان کے خیالات سے اتفاق رکھنے والے پولیس افسران و دیگر سرکاری محکموں نے ہر طرح سے مسلمانوں کا استحصال کیا، اور گزشتہ 2 دہائی سے ان پر دہشت گردی کے ایسے الزامات لگائے گئے کہ جن کے ذریعے ہزاروں مسلم نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر دی گئیں۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ بہرحال پارلیمنٹ میں صدائے احتجاج بلند ہونے سے ایک امید تو جاگی ہے، ایک کرن نظر آئی ہے کہ جلد ہی مسلم نوجوانوں کی رہائی کے راستے کھلیں گے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر۔ BJP نظریہ بدلے تو پھر بات بنے، دوریاں کم کرنے کے لیے مسلمانوں اور اجودھیا پر موقف تبدیل کرنے کا ملائم سنگھ کا مشورہ۔ عراق کویت فضائی سروس بحال، دونوں ملکوں کے عوام کو 22 سال انتظار کرنا پڑا۔ اوباما مسجد اقصی کا دورہ منسوخ کریں، حماس۔ ناظرین، रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में तारिक अनवर का एक मजमून शाया हुआ है जिसका उन्वान है मीडिया ट्रायल पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। मजमून निगाह लिखते हैं कि हिंदुस्तान के लिए जरूरी है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग को मजहब की ऐनक से ना देखकर उसके खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई शुरू करें क्योंकि इस मुल्क का भला और इसकी तरक्की को फरोग उसी वक्त हो सकता है जब ये एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट बनकर रहे। मजमून निगार आगे लिखते हैं कि इसी तरह दहशतगर्दों के मामलों में मीडिया ट्रायल पर भी हुकूमत को सख्त से सख्त मौकफ इख्तियार करते हुए शदीद पाबंदी आयद करनी चाहिए और मुल्क के चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर के उस दर्द को समझना होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुलजमीन का मीडिया ट्रायल अदालती फैसलों को मुतासर करेगा, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात का जायजा खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
बहुत बहुत शुक्रिया थर सईद, और नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। और अब नजर डालेंगे ईरान से शाया होने वाले अखबार जामे जम की कुछ अहम सुर्खियों पर। इस्लामी उम्मत के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना सहूनियों का मंसूबा है, कायद इंकलाब इस्लामी। कज़ाकिस्तान मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी। चक हेगल पेंटागन पहुंच गए। रोजामा जामे जम ने अपनी सुर्खी सैयद हसन नसरुल्लाह की तकरीर इल्जामात और अफवाहों का इजाला के ज़ैल में लिखा है। हिजबुल्लाह लुबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने बुध की रात तकरीर करके अपनी बीमारी के बारे में ज़राए इब्लाग की अफवाहों और हिजबुल्लाह पर लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब दिया और शिया और सुन्नी के दरमियान फितना अंगेजी को ऐसा खतरनाक इकदाम बताया जिससे लुबनान को नुकसान होगा। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने बारे में अफवाहों का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी वजह से उन्हें ज़राए इब्लाग के लिए अपनी तकरीर मुकर्रर वक्त से पहले करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं वीडियो और ऑडियो के जरिए इस बात पर ताकीद करता हूं कि जो कुछ भी आपने सुना वो है झूठ और हिजबुल्लाह के खिलाफ तशहीराती जंग का हिस्सा है। हालिया दिनों में कुछ ज़राए इब्लाग ने सैयद हसन नसरुल्लाह की बीमारी और इलाज के लिए उनके ईरान सफर की अफवाह फैलाई थी। रोजनामा जामे जम ने अच्छा दहशतगर्द बुरा दहशतगर्द उन्वान के तहत से एक मजमून शाया किया है जिसके अहम इक्तिबासात पेश खिदमत है।
माली में फ्रांस की फौजी कार्रवाई ने दहशतगर्दी के बारे में मगरबी मुल्कों के दोहरे रवैये को पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह शक्ल में जाहिर किया है। फ्रांस ने बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका के साथ मिलकर खुद को माली में फौजी कार्रवाई का हक दे दिया। इन मुल्कों ने पहले भी लीबिया में ऐसा ही कुछ किया था, ताहम उसकी सबसे वाज़ेह मिसाल शाम में नजर आती है। मगरबी ममालिक और कतर व सऊदी अरब और तुर्की जैसे इलाकाई मुल्क रकम, मदद और जदीद असलहे के जरिए शामी बागियों और किराए के दहशतगर्दों के साथ तआवुन कर रहे हैं ताकि ये लोग बशार असद की हुकूमत का खात्मा कर दें। शाम में सरगर्म बागियों के कई गुरोह लीबिया और माली की तरह ही इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने में मसरूफ है। इराक में भी बहुत से मुनहरिफ गुरोहों ने सद्दाम के जवाल के बाद अमरीकी इमदाद हासिल होने का ऐलान व एतराफ किया है और अफगानिस्तान में जहादी कही जाने वाली तंजीमों को माजी में अमरीकी इमदाद तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने इत्तेहादी यानी इसराइल की दहशतगर्दी को हमेशा नज़रअंदाज किया है। इन सब बातों पर गौर करने से यही नतीजा निकलता है कि जिस दहशतगर्दी की मगरबी ममालिक मजम्मत करते हैं उसके अलावा भी दहशतगर्दी की एक ऐसी किस्म है जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस पूरे अमल में मगरबी मीडिया खास तौर से सरगर्म है। जब फ्रांसीसी फौजी माली में बागियों को कत्ल करते हैं तो वो हीरो और बागी दहशतगर्द होते हैं, क्योंकि ये फ्रांस की नज़र में बुरे दहशतगर्द हैं। लेकिन जब शाम में बागी धमाके करके बेगुनाहों का खून बहाते हैं तो उसे मगरबी मीडिया में खास कवरेज ही नहीं दी जाती, क्योंकि ये काम उनकी नज़र में अच्छे दहशतगर्दों ने किया होता है।
और प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी हमारे साथ रहिएगा, हम आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां से आप मुलाहिजा फरमाएंगे पाकिस्तानी अखबारात का जायजा। इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मुंतहा काजमी, जो आपकी खिदमत में पेश करेंगी पाकिस्तानी अखबारात का जायजा। जी मुंतहा काजमी,
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पाकिस्तानी अखबारात के साथ मुंतहा काजमी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते वक्त आपको बताती चलूँ कि आज के तकरीबन तमाम पाकिस्तानी अखबारात ने सदर ज़रदारी के दौरा ईरान के हवाले से अपनी तमाम छोटी बड़ी खबरों को शाया किया है, और इसी हवाले से ही अपने तज़िये और इदारिये वगैरह भी शाया किए हैं। तो यहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूँगी मैं रोज़नामा एक्सप्रेस में शाया आज की चंद अहम सुर्खियों से। कराची एयरपोर्ट पर अमरीकी कंपाउंड, मुल्की सलामती को खतरात लाहक हो गए, रजा रब्बानी। मुल्क भर में बारिशों बर्फबारी का सिलसिला जारी, शहरी दिफा का आलमी दिन 1 मार्च को मनाया जाएगा। अरनाजन, प्रोग्राम के आगाज में मैंने जो तस्करा किया था अहम खबर का, उस हवाले से रोजनामा एक्सप्रेस अपनी सुर्खी लिखता है कि सदर ज़रदारी की ईरानी सुप्रीम लीडर और अहमदी निजात से मुलाकात, अमरीकी मुखालिफत के बावजूद गैस पाइपलाइन मनसूबा आगे बढ़ाना चाहिए, खामेनाई। नाज़रीन, मजीद तफसीलात से आगाही देती चलूँ कि ईरानी सदर का कहना है कि आलमी इलाकाई खिलाड़ियों ने पाक ईरान ताल्लुकात को नाकाम बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि इस्लाम दुश्मनों का मुकाबला किस तरह से करना है। और अगर बात करूँ तो पाइपलाइन की तामीर का बाकायदा आगाज भी 4 मार्च को पाक ईरान सरहद पर होगा। नाज़रीन, इस हवाले से अगर मजीद बात करती चलूँ तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा है कि अमरीकी मुखालिफत के बावजूद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम शुरू करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की ईरान में सदर अहमदी निजात और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई से मुलाकात हुई, जिसमें आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात की अहम मिसाल है। और नाज़रीन, दिनी असना ईरान के सदर महमूद अहमदी निजाद ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन की तामीर एक अजीम और अहम वाकया है, इस मंसूबे से दोनों ममालिक को फायदा होगा और अब तक उठाए गए तमाम इकदाम की हम हिमायत करते हैं। तहम आयतुल्ला खामेनाई का यह भी कहना था कि इस खत्े में इस्लामी जमहूरिया ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास महफूज तवानाई के वसाइल हैं, और हम पाकिस्तान को इसकी तवानाई की जरूरियात के मुताबिक महफूज तवानाई फराहम करने के लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन, अगर बात करूँ ईरान के वजीर तेल के हवाले से तो रुस्तम कासमी का कहना है कि हम पाकिस्तान से ज़राअत के शोबे में भी भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। और नाज़रीन, अब नजर डालती चलूंगी रोजनामा जंग में शाया आज की चंद अहम खबरों पर। पंजाब हुकूमत लश्कर जंगवी के खिलाफ कार्रवाई करे, रहमान मलिक। इस्लामाबाद, पाक ईरान गैस पाइपलाइन में सिफारतकारों की गहरी दिलचस्पी। आलमी ताकतों की जानिब से ईरान पर पाबंदियों में नरमी का अंदिया, मार्च में फिर मुजाकरात पर इत्तफाक। और नाज़रीन, कुछ बात करती चलूंगी रोजनामा जंग में शाया इदारी के हवाले से, उनवान आपको बताती चलूं, सियासत में फौज की गैर जानबदारी। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी का बयान कि फौज सियासी एतबार से किसी की पुश्त पनाही नहीं कर रही, महज जबानी दावा नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका पिछले 5 बरसों के दौरान पाक फौज अपने तर्ज अमल से मुसलसल सबूत फराहम करती रही है। ये बात वाजह है कि फौज ना तो किसी की पुश्त पनाही कर रही है, ना तवील मुद्दत का कोई टेक्नोक्रेट सेटअप चाहती है। जनरल अशफाक परवेज कियानी ने आजादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात को ना सिर्फ अपना ख्वाब करार दिया है, बल्कि इस बात पर अपनी खुशी का भी इजहार किया है कि ये ख्वाब अब ताबीर के करीब तर आ चुका है। फौज की आईनी जिम्मेदारी है कि जो हुकूमत भी बने वो उसका साथ दे। आर्मी चीफ की तरफ से जमहूरियत और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से दो टोक मौकफ सामने आने के बाद सियासी क्यादत की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात को ज्यादा से ज्यादा शफाफ बनाने के लिए कानून साजी समेत हर पहलू से इलेक्शन कमीशन का साथ दे, और आवाम को इबहाम की कैफियत में रखने की पॉलिसी तर्क करके निगरान हुकूमत के हवाले से फौरी तौर पर इकदाम करे। बसूरत दीगर अफवाह साजियों का सिलसिला जारी रहेगा, जो किसी के लिए भी किसी तौर मुनासिब नहीं है। ناظرین یہاں نظر ڈالتی چلوں گی روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں پر۔ کراچی میں نئی حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست مسترد، انتخابات کے التوا کا کوئی خواب بھی نہ دیکھے سپریم کورٹ۔ عالمی اور علاقائی کھلاڑیوں کی کوششیں ناکام رہیں، احمدی نژاد پاکستان کی توانائی ضروریات پوری کرنے کو تیار ہیں، خامنائی صدر زرداری سے گفتگو۔ وقت ضائع کیے بغیر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی کوشش کی جائے، چیف جسٹس۔ ناظرین پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے شائع خبر کا تذکرہ تو ہم روزنامہ ایکسپریس سے کر چکے ہیں، لیکن روزنامہ نوائے وقت سے اب بات کروں گی شائع کردہ اسی موضوع پر تجزیے کے حوالے سے جو کہ سرور منیر راؤ کا تحریر کرتا ہے۔ عنوان بتاتی چلوں، گیس پائپ لائن منصوبہ اور صدر کا دورہ ایران۔ ناظرین مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کے آخری مرحلے میں ایران کے دورے پر ہیں۔ اس دورے میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے علاوہ دو اور معاہدے بھی طے پائیں گے۔ ایک معاہدہ گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام سے متعلق ہے، جبکہ دوسرے معاہدے کے تحت ایران سے مایا پیٹرولیم گیس ایل پی جی پاکستان کو رعایتی نرخوں پر فراہم کی جائے گی۔ تاہم اس پر مزید بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے کے مصداق اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اب صدارتی سطح پر دستخط ہو رہے ہیں، جو ہمارے نقطۂ نظر سے انتہائی خوش آئند ہیں۔ واحد سپر پاور ہونے کے ناطے امریکہ کا خیال ہے کہ دنیا بھر کی توانائی کے وسائل اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیے جائیں۔ امریکہ نے دنیا پر حاوی رہنے کے لیے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ توانائی کے ذخائر خواہ کہیں بھی ہوں، ان پر بلا واسطہ یا بالواسطہ امریکہ کا مکمل کنٹرول رہنا چاہیے۔ تاہم اس پس منظر میں ایران اور کیسپین کے علاقے میں موجود خطیر توانائی کے ذخائر کی چابی اپنے پاس امریکہ رکھنا چاہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے کیا پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے امریکہ کے دباؤ کے مقابلے میں اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین اسی سوال کے ساتھ یہیں اب اختتام کروں گی میں آج کے اپنے جائزے کا۔ منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا اب، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ منتہا کاظمی۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں حسب معمول آپ ملاحظہ فرمائیں گے بین الاقوامی میڈیا سے منتخب چند کارٹون۔ تازہ ترین خبروں اور مقالوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید حسن زیدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔